प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान में तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तीसरे अध्याय का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन नामक अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं तक अध्ययन कर लिया है। आज हम इसी अध्याय में प्रमुख नहरों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख नहरें, पहली नहर है गंग नहर। राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहां से 1927 ईस्वी में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। ये राजस्थान की पहली नहर है। वर्तमान में इस नहर से श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। वर्तमान में गंग नहर से किस जिले में सिंचाई होती है? श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। और ये नहर 1927 में बनाकर राजस्थान में इस नहर से पानी लाया गया। दूसरी राजस्थान प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 ईस्वी में पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ। हरि के बैराज से हनुमानगढ़ के मशीतावली तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर में मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है तथा वितरिकाओं की लंबाई 8000 किलोमीटर से भी अधिक है, जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है? 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक है। ये एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाजों एवं नावों का संचालन भी किया जा सकता है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाजों एवं नावों का संचालन भी किया जा सकता है। थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए अब तक कई लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, सूखे एवं अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं पर्यटन आदि का विकास संभव हुआ है। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा मिला, मरुस्थल प्रसार पर रोक लगी, सूखे एवं अकाल पर नियंत्रण हुआ, पेयजल आपूर्ति बढ़ी, जल विद्युत उत्पादन होने लगा, पशुधन विकास को बढ़ावा मिला, मत्स्य पालन और पर्यटन का भी विकास हुआ। तीसरी नहर है भरतपुर नहर। पहली नहर हमने पढ़ी गंग नहर, दूसरी नहर पढ़ी इंदिरा गांधी नहर, और तीसरी इस अध्याय में नहर दी हुई है वह है भरतपुर नहर। भरतपुर नहर पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे बड़े बांधों, एनीकटों, तालाबों, कुओं एवं नलकूपों से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। वर्तमान में सिंचाई के लिए फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का विकास हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इसी अध्याय में जल संरक्षण और प्रबंधन। साधारण अर्थ में जल को सुरक्षित करके रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल को सुरक्षित करके बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। सुरक्षित करके रखना संरक्षण कहलाता है, अर्थात संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन तथा रखरखाव, जिससे उसके दुरुपयोग अथवा अनावश्यक क्षति को रोका जा सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत जल पर ही निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल के विदोहन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अतः प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके। जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना। जलाशयों में घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट न डालना। पेयजल की स्रोतों के निकट स्नान एवं कपड़े न धोना। जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल की पुनरावृत्ति आदि प्रयत्नों से जल की कमी और अवनयन की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में कई प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इन जल स्रोतों से लोगों को जल उपलब्ध होता था। इनकी अच्छी तरह से देखरेख की जाती थी। राज्य की विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियां आदि इसके उदाहरण हैं। तो जल के स्रोत कौन कौन से पाए जाते हैं राजस्थान में? तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियां आदि। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के कई उपाय किए। इसी तरह के प्रयास उदयपुर के शासकों द्वारा भी किए गए, जिनकी संक्षिप्त जानकारी इस अध्याय में दी गई है। राजस्थान में जल संरक्षण की विचारधारा बहुत प्राचीन है। यहाँ के राजाओं शासकों ने कई जिलों का निर्माण कराया। उदयपुर में कौन कौन सी जिलों का निर्माण कराया गया? जयसमंद झील इसका अच्छा उदाहरण है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया। किस नदी पर करवाया? गोमती नदी पर। जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने एवं जोड़ने तथा जिलों को जोड़ने के लिए विश्व के सबसे पुराने उदाहरण भी मेवाड़ में देखे जा सकते हैं। उदयपुर शहर के पश्चिमोत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिकलवास गांव के समीप आहड़ नदी पर महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा एक बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर पहुंचाने के लिए चिकलवास नहर का निर्माण किया। इस नहर निर्माण से फतेह सागर में आहाड़ नदी का पानी 118 वर्ष पहले पहुंचा दिया गया। 470 किलो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली घाटी में क्रमबद्ध जलाशयों का निर्माण तथा नदियों को आपस में जोड़कर यहाँ के तत्कालीन शासकों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्षा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का प्रशंसनीय कार्य जनहित में किया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर तथा फतेह सागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। वर्षा ऋतु में जब जलाशय पानी से भर जाते हैं तो इन सभी जलाशयों का जल स्तर एक समान हो जाता है एवं पानी आपस में मिल जाता है। उदयपुर बेसिन में विभिन्न छोटे बड़े जलाशय सिंचाई पेयजल एवं पर्यटन विकास हेतु जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण है। महाराणा राज सिंह जी प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर उसे स्थायित्व प्रदान किया। मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उभेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया। इस प्रकार उभेश्वर क्षेत्र के जल को जना सागर तथा फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। उभेश्वर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य सन 1670 से 85 के बीच में किया गया। इसी टॉपिक के साथ यह अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे इस अध्याय के पहला प्रश्न लिखें, जयसमंद झील का निर्माण कब व किसने करवाया, जयसमंद झील का निर्माण कब व किसने करवाया। ईश्वर लिखें, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया। दूसरा प्रश्न लिखें, जल संरक्षण के तीन उपाय लिखिए, जल संरक्षण के तीन उपाय लिखिए। आंसर लिखें, जल संरक्षण की निम्न उपाय हैं। पहला उपाय लिखें जल संरक्षण का, जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना। दूसरा उपाय लिखें जल संरक्षण का, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान एवं कपड़े न धोना, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान एवं कपड़े न धोना, स्नान एवं कपड़े न धोना। तीसरा जल संरक्षण का उपाय लिखें, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना। तीसरा प्रश्न लिखें, तीसरा प्रश्न लिखें, गंग नहर का निर्माण कब व किसने करवाया, गंग नहर का निर्माण कब व किसने करवाया। 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। आंसर लिखें, इंदिरा गांधी नहर। एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है वह है इंदिरा गांधी नहर। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास में फोर्थ अध्याय के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। थैंक यू।